बोलिए भगवान महावीर स्वामी की
जय।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी की
जय।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय।
हम सभी लोग निरंतर एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन हमें मिला है उसे हम कैसे सार्थक करें, उसे हम कैसे और अच्छा बना सकें। जीवन उसका अच्छा बनता है जिसकी दृष्टि निर्मल हो। जीवन उसका अच्छा बनता है जिसे अपने आत्मा और देह के बीच भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ हो, जिसे इस बात की समझ हो कि ये देहाशक्ति मेरे संसार को बढ़ाने वाली है, मुझे देह से भिन्न अपने आत्मा के प्रति रुचि होनी चाहिए। और जब एक बार देहाशक्ति दृष्टि के मिलने से घटने लगती है तो संसार ही मानो घटने लगता है। कभी गौर से देखें कि सुबह से शाम तक हम किस के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो हम पाएंगे कि हम अपनी देह के और दूसरे की देह के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। हम और अन्यत्र कहीं देख भी नहीं पाते हैं, ना हम सोच पाते हैं। जितनी शक्ति से ऊपर उठ जाएं, बाकी तो पूरा समय इस देह की ही सेवा टहल में हमारा व्यतीत होता है। ये हमारी देहाशक्ति तो है ही, हमें अगर एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई है जो इस आत्मा को देह से पृथक समझने के लिए हमें प्रेरित करती है तो उस दृष्टि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। भेद विज्ञान अगर किसी को हो जाता है तो उसके आचरण में जरूर से परिवर्तन आता है। भले ही वो अल्प परिवर्तन क्यों ना हो, पर परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कोई और देख पाए या न देख पाए, जिसके लिए भेद विज्ञान हुआ है, जिसकी दृष्टि निर्मल हुई है, वो स्वयं तो अपने आचरण को बहुत गौर से देखने लगता है कि मैं इस राग द्वेष के प्रपंच में कितना अधिक आशक्त हूं या कि मैं इस राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील हूं। भेद विज्ञान है क्या चीज? एक तरह का साइंस ऑफ सेपरेशन है, एक तरह के पृथककरण का विज्ञान है। दो पृथक चीजें हमारे मोह के कारण एक मालूम पड़ने लगी हैं। मुझे सिर्फ ये जतन करना है कि मैं इन दोनों के अलग अलग स्वरूप को समझ करके इन दोनों को भिन्न महसूस कर सकूं। भिन्न मान लेना, जान लेना आसान है, हालांकि ये भी उतना आसान नहीं है, पर फिर भी भिन्न मानना और जानना अपेक्षाकृत आसान है भिन्न अनुभव करने। जो व्यक्ति देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करने लगता है उसके लिए उसके आचरण में परिवर्तन आना बहुत आसान हो जाता है। हमारे अपने आचरण में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो हमें गौर से इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच मैं देह और आत्मा के पृथककरण के अनुभव की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा। इसे हम साइंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहें तो भी कह सकते हैं। ये एक तरह की पारदर्शिता का विज्ञान है। अगर ये हमें हो जाए तो फिर जो भीतर आत्मा दिखाई नहीं देती, मात्र देह दिखाई देती है, देह के पीछे छुपी हुई उस आत्मा को भी देखने का हम उपक्रम करेंगे अगर हमें ये भेद विज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं ये बात इसलिए कहूं कि जब जब मैं आचरण में परिवर्तन की बात कहता हूं तो मुझे लगता है कि आचरण में परिवर्तन की बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, जबकि ये चीज तो सहज रूप से परिवर्तित होना ही चाहिए थी। हम कितने चोर लोग हैं कि हमें दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान होने के बाद भी अपने आचरण को परिवर्तित करने की ललक उत्पन्न नहीं, जबकि जो दृष्टि संपन्न है, आत्मज्ञान से संपन्न है, जो इतनी सब बातें सुनता और जानता है, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बड़ा आश्चर्यमान। वे इच्छाएं, वे राग द्वेष, वे संसार के प्रपंच ज्यों के त्यों बने रहते हैं और व्यक्ति बहुत ज्ञान और बहुत बाह्य क्रियाएं करने लगता है, तो बहुत आश्चर्य लगता मुझे। अपीवन में भी झांक के देखता हूं कि क्या सिर्फ आचरण में परिवर्तन कर लेने से मेरा कल्याण हो जाए। अभी तक तो हो जाना चाहिए था, मैंने तो अपने आचरण को कितना परिवर्तित कर लिया, लेकिन मेरी दृष्टि तो उसी राग द्वेष के प्रपंच को बढ़ाने की है। मेरी दृष्टि में विद्रागता जब तक नहीं आई है, तब इस बाह्य सारे क्रियाकांड से होने क्या वाला, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा अंदर महसूस होने लगता। कई बार आपको पता नहीं महसूस होता कि नहीं होता, आप जानो, लेकिन ये एहसास होना चाहिए अपने भीतर में, तब जाकर के हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ये हमारे अंतरंग में आना चाहिए कि टू एनफ, मैंने अब बहुत, मैं इस प्रपंच में नहीं बढ़ूंगा, मैं इन सब चीजों से अपने को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। ये एहसास हमारे भीतर होना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ सचमुच मुझे वो दृष्टि मिल गई है, वो साइंस ऑफ मिस्ट्री, वो जो रहस्य था जीवन का, वो मालूम पड़ गया है। मेरे भीतर एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, मैं बाहर भीतर एक जैसा होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। मैं देह में आशक्त होकर के अपना जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं आत्म रुचि पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्नशील। वरना इतनी सब चीजें की क्या आवश्यकता पड़ती कि अभक्ष चीजों का त्याग करो, कि रात्रि में भोजन का त्याग करो, कि ये मत करो, कि वो मत करो। ये तो उनके लिए कहने की आवश्यकता है जो दृष्टि विहीन है। दृष्टि संपन्न व्यक्ति के लिए सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि मिल जाने के बाद ये सब चीजें ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूं आपो आप इनसे विमुख हुए बिना नहीं रहे। अगर नहीं विमुख हुआ है तो अभी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त नहीं हुई, अभी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ किताब का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। ये कसौटी हमारे लिए कितनी बार हम पर उपकार करके आचार्य भगवंतों ने अपने जीवन को परखने के लिए दी है। हम एक बार परख के तो देखें इस कसौटी पर कि क्यों मेरे जीवन में ये सब चीजें हैं, जानते समझते हुए भी, तब अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वरना वैसी स्थिति है अपन सबकी, तो मैं ईमानदारी से कहूं मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप मुझे बिल्कुल अलग नहीं माने, मैं शामिल करके चलता हूँ अपने आप। आपने इधर ऊपर बिठा दिया है, इससे ऊपर तो कली बैठी रहती, ऊपर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर से ऊपर होने में फर्क पड़ता है, ये मैं जानता हूँ बहुत ईमानदारी से। इसलिए बहुत कई बार मेरे मन में ये संसार के प्रपंच को देख करके और इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद भी व्यक्ति के भीतर अगर परिवर्तन नहीं आता तो एक बहुत छटपटाहट मुझे लगती है कि अरे ये हमारी चेतना, हमारे उपादान में कितनी कमजोरी है कि अच्छे श्रेष्ठ निमित्त मिलने के बाद भी हम अपने उपादान को जागृत करके अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते हैं और उसी प्रपंच में संसार में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति रोज सुबेरे से वो पानी सींचने का फव्वारा होता है, पानी भर लेते हैं और फिर उसमें से एक फब्बारे जैसी वो नली लगी रहती, उससे ऐसे सींचते हैं क्यारियों में पानी। पहले चलता था, आज भी वो फब्बारा पानी सींचने का चलता हो तो चलता हो, माली वगैरह बगीचे उसका उपयोग करते हैं। तो वो आदमी रोज जो है फब्बारे में से पानी सींचता करता था कि मैं पानी सींच रहा हूं। पड़ोसी ने कई बार देखा कि उस फब्बारे को हिलाता तो है लेकिन उसमें से पानी वानी नहीं गिरता। तो उसने एक दिन कहा कि आप रोज फब्बारे से क्यारियों में पौधों में पानी सींचते हो लेकिन पानी तो कभी हमने गिरते नहीं देखा। तो उसने कहा जरूरत भी नहीं है, मतलब बोले वो फूल वगैरह जो लगे हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो अब वो और मुश्किल में पड़ा वो पड़ोसी कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये पानी ही नहीं गिरता, क्या कारण है? ये कहता कि पानी की जरूरत भी नहीं है गिराने की क्योंकि प्लास्टिक के फूल है। तो उसने कहा फिर ये उपद्रव करते काहे को? उसने कहा इसलिए ताकि पड़ोसी लोगों को ये भ्रम ना हो जाए कि ये प्लास्टिक के हैं, मैं रोज सींचता हूँ, नहीं तो ये ज्यों के त्यों ऐसे लगे रहेंगे तो लोगों को संदेह हो जाएगा कि बिना पानी सींचे और ये ज्यों के त्यों कैसे लगे, मैं पानी सींचने का भी नाटक करता। आया समझ में? हाँ, तो क्या होगा, मैं रोज रोज भगवान के अभिषेक का, रोज रोज पूजा का, रोज रोज और सब स्वाध्याय का, इस सब का फब्बारा लेकर के सींचता तो हूँ लेकिन फूल सब प्लास्टिक के हैं, जीवन में परिवर्तन कोई भी नहीं। आ गया समझ में? ऐसा न करना भैया, ऐसा करते तो कई जिंदगियां गुजर गईं। अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए सारी क्रियाएं हैं, चाहे व्रत नियम उपवास हो, चाहे भगवान की पूजा पाठ हो, चाहे तीन समय स्वाध्याय हो, सब एक ही उद्देश्य के लिए हैं। उस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि मैं कैसे इस देह से जो मेरी आत्मा पृथक है उस आत्मा की अनुभूति कर सकूं, उस पृथकता का अनुभव कर सकूं, मैं देह में रह करके उस देह की ही अनुभूति से सुबह से शाम तक सुख दुख का अनुभव करता रहता हूं, देह के लिए सुख के साधन जुटाता रहता हूं, दुख होने पर व्यथित हो जाता हूं जबकि इस देह से मैं भिन्न हूं, ये एहसास करने के लिए ये सारी चीजें हैं। फिर चाहे हम पांच पापों का त्याग करने की सौगंध लें और चाहे उन पांच व्रतों को धारण करके और एक बाउंड्री बनाने के लिए उन व्रतों की रक्षा और उन व्रतों की वृद्धि के लिए देश व्रत लें और अनर्थ दंड व्रत ग्रहण करें, और या कि आज हम भोगोपभोग के परिमाण का विचार करें, इन सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि मैं जिस किसी तरह से इस देहाशक्ति से बचकर अपने आत्मा का अनुभव कर सकूं, जो मैंने कर्म बांध रखे हैं जिनके वजह से मैं संसार में भ्रमण करता हूं, पंच परावर्तन करता हूं, उससे मैं ऊपर उठ सकूं, इसके लिए भोगोपभोग की सीमा हम अपने जीवन में करें। इस पर हम कई प्रकार से विचार कर चुके हैं। आचार्य भगवंतों ने हमारी विषया शक्ति को घटाने, हमारे इंद्रिय और मन के विषयों को सीमित करने की सलाह दी है, सिर्फ इस वजह से कि जब ये देह मेरी नहीं है तब मैं इसमें इतना आसक्त क्यों होता हूं? और मुझे अपनी आसक्ति घटानी है तो मुझे इंद्रिय और मन के विषयों से पहले आसक्ति घटानी पड़ेगी, और ऐसे नहीं घटती इंद्रिय और मन के विषयों से आसक्ति, उनकी सीमा कर लूंगा तो हो सकता है कि जितनी सीमा मैंने रखी है उसके बाहर की चीजों से आसक्ति तो कम से कम घट जाएगी। ये अभ्यास जैसे बाल बोध अपन पढ़ते हैं ऐसे ही हम लोगों के लिए ये अभ्यास करने की शिक्षा दी गई, और उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है कि ऐसे धीरे धीरे पहले मैं अपने भोगोपभोग के चीजों की सीमा करूं, उनसे आसक्ति घटाऊं, तब फिर मेरी देहाशक्ति घटेगी, और देहाशक्ति जिसकी जितनी कमती हो वही व्यक्ति आत्मा की तरफ रुचि बढ़ा सकेगा। वरना तो सुबह से शाम तक देह की सेवा शुश्रूषा में ही समय व्यतीत हो जाएगा, आत्मा की खबर लेने के लिए वक्त ही कहां मिलेगा। भोग उपभोग के परिमाण के लिए थोड़ा सा समझ लें, ऐसी वस्तुएं जो एक बार ग्रहण में करने आने के बाद दूसरी बार फिर उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता, वे सब पांच इंद्रिय और मन के विषय, वे भोग पदार्थ कहलाते हैं। और जिन्हें हम एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से उनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ उपभोग कहलाते हैं। भोजन इत्यादि तो भोग पदार्थ हैं और वस्त्र आभूषण इत्यादि ये उपभोग की वस्तुएं हैं, कई बार हमारे उपयोग में आती हैं। इन सब को भी सीमित कर लेना, आज के समय में इन सब का हम लोग असीम उपयोग, अंतहीन उपयोग करने की जुगत में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक भोग और उपभोग की वस्तुएं जितनी अधिक हो सके मेरे पास उतनी अधिक हो, इसका प्रयत्न हम करते हैं। हमें इसकी सीमा करनी चाहिए, खाने पीने ओढ़ने बिछाने सुबह से शाम तक के काम में आने वाली सारी चीजें, उन सब की हम सीमा बना लें तो हमारे जीवन में देहाशक्ति घट सकती है, हमें थोड़ा सा समय मिल सकता है अपने आत्म कल्याण के लिए। इसलिए ये प्रयत्न करना है। पांच प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ कहे गए, अभी हम उनसे ही शुरू करें। जिन चीजों में बहुत त्रस जीवों का घात होता है ऐसे अभक्ष्य पदार्थ, जिसमें बहुत एक इंद्री जीवों का बहुत घात होता है ऐसे बहुघात प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ, जिनसे हमारे जीवन में प्रमाद उत्पन्न होता है ऐसे भी अभक्ष्य पदार्थ है, जो अनुपसेव्य हैं सज्जन पुरुषों के द्वारा सेवनीय नहीं है ऐसे भी अभक्ष्य पदार्थ हैं, और अनिष्टकारी भी हैं जिनके ग्रहण करने से हमारे प्राणों की क्षति होती है। क्या इतना विचार हम नहीं कर सकते सब चीजों के बारे में? सिर्फ खाने पे लागू नहीं करना, ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक है। इन सब चीजों को अगर हम और दूसरी चीजों पर भी जो पहनने ओढ़ने की है उन पर भी लागू करें तो हम देखेंगे कि हाँ सचमुच हम इन सब चीजों से बचकर, इन सब चीजों की पूर्ति ना करके इनसे समय निकाल के, मुझे लगता है कि आज जितने सुख सुविधा के साधन हैं उतनी आसानी होनी चाहिए थी जीवन जीने की। पहले लोगों के पास इतने सुख सुविधा के साधन नहीं थे, सवेरे से कब आधे पौन घंटे तो चूल्हा जलाने में ही लग जाए, फूंकते फूंकते आंखें आंसू भर से भर जाए और धुएं से भर जाए पूरा का पूरा घर, और वो आधे घंटे पौन घंटे उसी में लग गया। और अब अगर जो है आटा पीसना है तो सवेरे 4 बजे उठकर के चक्की चलाएंगे तब घंटे भर में जो है और आटा रोटी बनाने के लायक बन पाएगा, और फिर मसाले पीसने में आधा पौन घंटे उसमें लग जाएगा। अब ये चीज इतने अच्छे साधन आ गए, अब तो बहुत आसानी से बटन दबाते ही सारी चीजें हो जाती है, उधर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इधर मिक्सी में सारे पिसकर के मसाले आ जाते हैं, उधर मशीन में से जो है वो आटा आ जाता है। ये जो आधे आधे घंटे सब में लगता था वो समय चला कहाँ गया? हमने सोचा था कि ये साधन अपनाने से समय बचेगा तो मेरे धर्म ध्यान के काम में आ जाएगा, वो धर्म ध्यान के काम में ना आकर के मेरी देहाशक्ति के कारण किसी और देह की सुविधा में लग गया। ये जितनी देहाशक्ति है वो ही मेरे अपने जीवन को रेगुलेट करती है, वही मेरे अपने जीवन को चलाने वाली है। देखा जाए अगर, कहते जरूर हैं कि हमारी आत्म कल्याण की रुचि है, लेकिन आत्म कल्याण की रुचि वाला ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ता। आप ही बताओ पड़ता है क्या? हमारे सामने बैठे ऐसे हाउ कहियो ऐसा नहीं कह रहे, ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके कहना किसी अकेले कोने एकांत में कि सचमुच ऐसा है या नहीं है। अगर मेरी आत्म कल्याण की रुचि है तो मैं इतना फैला रहा काय को फैला रहा हूँ, इतना संसार का प्रपंच काय को बढ़ा रहा हूँ, पेट भरना ही है ना, इतना ही तो है और क्या करना है मुझे। लेकिन उसी पेट भरने के लिए मैं सुबह से शाम तक प्रयत्न करता रहता हूं, ये विचार आना चाहिए। है बहुत छोटी सी चीज, दूसरे के कहने सुनने से नहीं, अपने भीतर से ये विचार क्यों नहीं आता, आना चाहिए, स्वयं आना चाहिए। तब तब ठीक ठीक भोगो भोग का परिमाण हो सकेगा। अकेले बाहर से सौगंध ले लेने से नहीं होगा, भीतर से ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। जिसकी भोगवादी दृष्टि है वो भोगो भोग का परिमाण कर भी लेगा तब भी भोगा शक्ति भीतर से नहीं जाएगी। वो तो जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि है वो व्यक्ति बाह्य में भोगो भोग की सीमा अपने आप स्वतः ही कर लेगा। दो ही दृष्टियां हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण है या आध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। भौतिकवादी और भोगवादी दृष्टिकोण तो सारे संसार में दिखाई ही पड़ता है सुबह से शाम तक, लेकिन थोड़ा सा अपने दृष्टि में आध्यात्मिक चेतना भी हमारी जागृत होनी चाहिए, जिससे कि हमें स्वयं अपने जीवन में अपने आचरण को परिवर्तित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। साइंस के हिसाब से इन पांचों चीजों का विचार करें तो जरा भी वैज्ञानिक नहीं है इन चीजों का ग्रहण करना, अत्यंत अवैज्ञानिक है। जिन चीजों में त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे मांस और मधु के बारे में सर्व प्रसिद्ध है कि ये दोनों चीजें ही दूसरे की क्षति और स्वयं के जीवन को भी नष्ट करने वाली हैं। ये वर्तमान में बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज को कह रहे हैं कि धीरे धीरे और हमें शाकाहार पर आना पड़ेगा। हमारा यह जो मांसाहार की प्रवृत्ति है वो योग नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के बैलेंस को गड़बड़ करने वाली है, पर्यावरण को असंतुलित करने वाली। दूसरी तरफ जिसमें कि बहुत जीवों का घात होता है, जिसे हम लोग अदरक मूली गाजर जमीकंद कहते हैं, उन चीजों को भी आचार्य भगवंतों ने सीमित क्या पूरी तरह से छोड़ देने की बात कही है। कभी विचार करिएगा, अंडरग्राउंड रूट्स और अंडरग्राउंड स्टैम्प्स जो साइंस की भाषा में कहलाते हैं, वे ये सब चीजें हैं जमीकंद जिनमें बहुत जीवों का घात होता है। भले ही एक इंद्री जीव हैं, लेकिन अधिक प्रचुरता से उनका घात होता है। एक मूली एक गाजर खाने के लिए 6 महीने तक जीवित रहने वाले एक पूरे वृक्ष को नष्ट कर दिया जाता है, तब जाकर के हमारे हाथ में एक मूली और एक गाजर आती है। कभी ख्याल किया, जबकि खाने पीने की और भी चीजें हैं, पेट भरने की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है इसलिए खाना पड़ता है। 6 महीने तक वो वृक्ष जिंदा रहता है और वो वृक्ष अपने आड़े समय में जबकि उसे पानी और धूप नहीं मिलेगी, तब अपनी जड़ों में या अपने तने में भोजन सामग्री संचित करता है। ये रिजर्व फूड है उसका, चाहे मूली हो चाहे गाजर हो चाहे आलू है, उस पूरे 6 महीने तक जिंदा रहने वाले पेड़ का रिजर्व फूड है, संचित भोजन है, जिसे हम छीन लेते हैं। और छीन क्या लेते हैं, उसका जीवन नष्ट करके छीन पाते हैं, वैसे नहीं छीन सकते। उस पूरे वृक्ष को नष्ट करना पड़ता जो 6 महीने तक जिंदा रहता। पेड़ में से एक फल तोड़ लेने से हमारा जीवन भी चलता है और पेड़ की क्षति नहीं होती, लेकिन ये ऐसा फल है जिसको कि हम छीनते हैं तो पूरा पेड़ नष्ट होता है। और एक स्क्वायर फीट फर्टाइल सॉइल में मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, ये किसी भी साइंस वाले से पूछा जा सकता है। इतनी मात्रा में अनंत जीव राशि जिसको अपन कहते हैं, अनंत काय जीव, वो उस मिट्टी में रहते हैं जिसके भीतर ये एक एक फिट नीचे तक ये चीजें होती है। उनको उखाड़ने में उन सब जीवों की क्षति होती है। वो बहुत अच्छा रिसोर्स है उनके लिए, पौष्टिक चीजें उनको मिलती हैं इसलिए, और बाकी मिट्टी में कम जीव रहेंगे जिसमें ये मूली गाजर और आलू उगते हैं, उसके चारों तरफ तो अनंत जीव राशि उत्पन्न होती, उस सब का भी घात होती। इतना सब बहुघात होने के बाद भी हमारी आसक्ति इन चीजों के प्रति अभी गई नहीं है। विचार करें थोड़ा सा, मुझे कहना कुछ नहीं है कि आप छोड़ दें, आप विचार करें। आप ज्ञानवान हैं, आप समझदार हैं, आप दृष्टि संपन्न हैं, ये कहना। आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि हम सब ज्ञानवान दृष्टि संपन्न अत्यंत धर्मात्मा धर्मनिष्ठ लोग कहलाते हैं। इसके बाद भी हमारी प्रवृत्ति में अभी निवृत्ति नहीं आई, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है, बाकी सब संसार की प्रवृत्ति संसार बढ़ाने वाली है। कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो संसार से पार कर सके, सिर्फ एक ही है जो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है, जिसमें वीतरागता के लिए मैं थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करता हूँ ताकि मेरे वीतराग भाव में वो सहयोगी बने, मेरे राग वेश को घटाने में सहयोगी बने, उतनी ही प्रवृत्ति करता हूँ, तो वो प्रवृत्ति मन वचन काय की संसार से पार लगाने वाली, बाकी सब प्रवृत्तियां जितनी हम करते हैं बढ़ाने वाली। कभी विचार करें इस चीज का, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन चीजों में हमारी आसक्ति सिर्फ एकमात्र वही कारण है जो हमें उन चीजों से मुक्त होने में बाधक बन रही है, और प्रमाद वर्धक चीजें ये भी धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में प्रवेश करती जा रही। सब समझते हैं कि प्रमाद बढ़ाने वाली नशा करने वाली चीज शराब है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। शराब तो एक प्रतीक है मात्र, लेकिन कितनी चीजें शामिल हो गई। प्रश्न आते हैं तो समझ जाता हूँ कि कोई अभिषेक करने वाला भी बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा, तब तो प्रश्न आया है कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी क्या अभिषेक करने की पात्रता रखता है। पंडित जी तो आ गए हैं, तीन तीन प्रतिष्ठाचारी बैठे हुए हैं, से पूछ लेना कि अभिषेक करने वाले की कितनी योग्यता होनी चाहिए। मैंने तो इन्हीं लोगों से कुछ चर्चा करके और ये जाना कि जैसा आचार्यों ने अभिषेक के लिए जितनी पवित्रता बनाई है, वो तो भगवान के छूने की पवित्रता पात्रता तक हमारे भीतर नहीं है। हम किस हाथ से भगवान को छू सकेंगे क्या? हमारे हाथ उतने पवित्र है नहीं। जिन हाथों से हमने एक भी धार्मिक कार्य नहीं किया, सिर्फ अपनी भोग विलास की सामग्री जुटाने में ये हाथ लगे रहे हैं, उन हाथों से क्या भगवान का हम अभिषेक कर सकते, उनका स्पर्श कर सकते? और अकेले स्पर्श करने से हाथ से भगवान के हम कभी पवित्र नहीं हो जाएंगे। भगवान के स्पर्श करने का मतलब है कि मेरे मन में वो बात आ जावे जो कि भगवान बनने में सहयोगी है, तो भगवान का स्पर्श मेरे जीवन को बदलेगा। वरना सब मूर्तियों के हाथ लगा लगा के भी माथे से नहीं पूरे शरीर से रगड़ लो तो भी कुछ नहीं होता, ये कह रहा हूं। थोड़ी कड़ी बात लगेगी लेकिन है तो ऐसा ही, जीवन क्यों नहीं बदल रहा? मैं तो ये देखता हूं, महीने भर होने को हो गया लेकिन आज भी कभी गौर से देखना कि मेरी कषायों में कोई परिवर्तन आया? इतने निमित्त प्रबल मिलने के बाद भी मेरे अंदर कषाय में मंदता आई, या कि अभी भी वही आंखें, अभी भी सारे संसार को उसी अपनी गंदी आंख से देखता हूं, वही दुर्भावनाएं मेरे भीतर आज भी हैं, वही राग द्वेष आज भी हैं जो आज से एक महीने पहले थे। अगर वैसे ही हैं तो ये चार महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे, और चार महीने क्या 400 दिन नहीं, 4000 दिन नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी, तब भी मैं अपने वहीं के वहीं खड़ा रहूंगा, एक इंच भी नहीं हटूंगा, तो क्या लाभ हुआ मेरा इस सब चीजों का? ये विचार करना कभी तो शायद समझ में आए कि हाँ हो सकता है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ ये बात कि मेरे से अगर कोई पूछता है कि आपको कहाँ अच्छा लगता है, तो आज बहुत मेरे मन में थोड़ी सी बात है और मैं उससे व्यक्त कर रहा हूँ, आपसे डायरेक्ट नहीं कह पा रहा हूँ, इनडायरेक्ट कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वहाँ अच्छा लगता है जहाँ राग द्वेष नहीं होता, जहाँ सब प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के दोष नहीं देख करके और एक दूसरे का सहयोग करके बढ़ते, वहां अच्छा लगता, बाकी इस संसार में कहीं अच्छा नहीं है। आप मुझे कहीं भी सोने के कमरे में बिठा देंगे, सोना मड़ करके, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे और जो भी सुविधाएं हैं वो भी दे देंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक ही चीज अच्छी लगती है। आप मेरे चरणों में बैठ करके घंटों पूजा कर लेंगे तो भी मुझे आनंद नहीं आएगा, मेरी जय जयकार में पंडाल नहीं, आप कुछ भी गुंजा देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है तो जहाँ प्यार से सब लोग रहते हैं, जहाँ एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आपस में और उत्साह पूर्वक जो है अपने कल्याण की ही चर्चा करते हैं, एक दूसरे के दोषों की चर्चा नहीं करते, वहाँ अच्छा लगता है। आपको लगता अच्छा है ऐसे वातावरण? आपको तो नहीं लगता होगा, अगर लगता होता तो बना नहीं लिया होता ऐसा। मुझे तो ऐसे वातावरण में ही अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगने लगे, मैंने तो ये सोचा था कि शायद आपको ऐसे वातावरण में जीना अच्छा लगे, तो आप वैसा बना लेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा। और थोड़ा समय है, धीरे धीरे करके तो सारा समय व्यतीत ही होने को है, कोई रुकता थोड़ी हमारे लिए, समय रुक जाता तो शायद हम कुछ कर पाते नहीं। समय के रुक जाने पर भी वे लोग नहीं कर पाते कुछ जो कि अपने जीवन में व्यतीत होते समय में कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने चाहे बाह्य में हम थोड़ा बहुत भी कर पाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंतरंग में कषायों की निर्मल कषायों की मंदता और पवित्रता अगर हमारे जीवन में नहीं आई तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। और विशेष कोई बात मेरा कहने का विशेष मन नहीं है, मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि वर्णी जी का जीवन बहुत सरल था और भोग उपभोग परिग्रह परिमाण ये सब चीजें उनके जीवन में सहज थीं, और उनका एक उदाहरण सुना करके अपनी बात आज इतनी ही पूरी करता हूं ताकि हमें लगे कि हाँ सचमुच ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं व्रत नियम इत्यादि करने के पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे जीवन में आसक्ति घटे और हम प्राणी मात्र और अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करें। वर्णी जी बंडा से जो है कर्रापुर पहुंचे, कर्रापुर से और सागर जाना था, पैदल पैदल चलने का नियम ले लिया था, पर उसका कारण इतना ही था कि बस में बैठे थे एक दिन, टिकट लेके बैठे थे, सात प्रतिमा थी उस समय, दसवीं प्रतिमा वाला करे तो करे त्याग वाहन का, वैसे ग्यारहवीं प्रतिमा वाले को वाहन का त्याग हो जाता है, लेकिन सातवीं प्रतिमा में उन्होंने वाहन का त्याग नहीं किया था। सो बैठ के जा रहे थे, टिकट ली थी, लेकिन कोई नेता वगैरह आए होंगे उस बस में जाने के लिए, सो कंडक्टर ने उनको कहा कि बाबा खड़े हो जाओ तुम। तो उन्होंने कहा भाई हमने टिकट ली है, अच्छे बैठे हैं हम, हमें क्यों आप खड़ा कर रहे। कहते तुम होते खड़े के नहीं होते। कहले भैया नाराज न हो, खड़े का होते हम तो उतर ही जाते। सो गाड़ी रोक करके कहा रोको भाई, और उतर गए और नीचे उतर के एक कायोत्सर्ग करके और उसी समय संकल्प लिया कि आज से वाहन में बैठने का त्याग, जिसमें जो है इतना विकल्प करना पड़े संक्लेश होवे उस चीज ही को छोड़। ऐसी दृढ़ता थी, ऐसी सरलता थी उनके जीवन में। जब वो पैदल चले जा रहे थे सो रस्ते में एक गरीब आदमी दिखाई पड़ गया, और ठंड का तो समय था, शाम को और ठंड बढ़ने लगी थी, खेस ओढ़े थे अपनी, मोटा सा जो है चद्दर उसी को खेस बोलते, तो वो ओढ़ के चले जा रहे थे और रास्ते में उसको देख करके और दया के भाव आ गए। जितनी अनाशक्ति होगी उतनी दया होगी, आशक्त व्यक्ति दया नहीं कर सकता। उनके भीतर दया के साथ साथ अनाशक्ति भी थी, सो फौरन अपनी केस, अब अकेली क्या बची, लंगोटी बची, खेस उतार करके उस व्यक्ति को दे दी। जो साथ में हते व्यक्ति वो कहने लगे कि बड़ी जी क्या करे, अब सागर में बड़े शहर में और ऐसे अच्छी लग होगा, ऐसे चले जाए। सुकेन ले कोई बात नहीं, अब हमने तो दे दी, अपन तो अभी थोड़ा उजाला है, सो यहीं बैठ करके सामायिक करें लेते हैं, आज बड़ी सामायिक कर लेंगे, रात घिर जाएगी, सो रात के अंधेरे में चुपचाप घरे चले जाए, को उन्हें देखते हैं। मगर हमने तो हमारे मन में आया सो दे दिया। और घर पहुंचे तो चिरौजा बाई ने दरवाजा खोला, उनकी अकेली लंगोटी देख करके और समझ गई, उनके भी आंख में आंसू भर आए और कहने लगी कि मेरा तो तुम्हें अपना पुत्र बनाना सार्थक हो गया, ऐसी ही दया वान में पुत्र चाहती थी वो मुझे मिल गया। अपना सर्वस्व दे करके भी इतना अनाशक्त व्यक्ति जो कि दूसरे की चेतना के लिए चिंता करे, अपनी देह की चिंता न करे, कोई व्यक्ति अपना और दूसरे का कल्याण कर सकता है। भैया इतनी ही बात आज के लिए पर्याप्त है अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए।